ओम शांति। सभी अपने सीट पर सेट होके बैठ जाइए और शीलो आदरणीय शीलो बहन जी को हम अपनी करताड़न से स्वागत करेंगे। अभी आपको बहुत सुंदर सेफ्टी की टेक्निक्स, सुरक्षा की कुछ तंत्र के बारे में बहन जी क्लास कराएंगी। जो पीछे पीछे बैठे हैं कृपया वो आगे आगे आके बैठ जाइए, तो आपको भी अटेंशन रहेगा, तो आगे बैठ जाइए। बाबा जैसे कहते हैं, बच्चे चलन और चेहरे से बाप का साक्षात्कार करो। इस प्रकार आदरणीय शीलू बहन जी का चेहरे से आप देख रहे हैं तथा उनकी योगयुक्त स्थिति, उसकी बोल से बाप दादा को भी साक्षात्कार आप सबके सामने कराएंगे। आप अपनी निर्मल और तेजस्वी वाणी से विश्व के कोने कोने में बाप दादा का संदेश पहुंचा रहे हैं। विशेष राजयोग शिविर द्वारा आप सेवाओं को विस्तार कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। हम सब जानते हैं शीलू बहन जी का नाम ही है राजयोग शिविर वाली शीलू बहन। इतनी राजयोग शिविर और शीलू बहन का निकट संबंध है। 1959 में आपने एमएससी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते समय ही आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ तथा आपका ईश्वरीय ज्ञानमय जीवन अपनाते हुए 48 इयर्स हुआ है। आपने साकार बाबा मम्मा का पालना प्राप्त करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त किया है तथा आपने नेपाल अफ्रीका मॉरिशियस देशों में सेवाएं दी है। 76 से आप मधुबन में चल रहे राजयोग शिविरों का मुख्य संचालिका बन के सेवा कर रहे हैं तथा विशेष फॉरेनर्स के क्लासेस तथा मुरली का ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में देते हैं। तो इस प्रकार आपने पांचों खंडों में 60 देशों में सफर करके बाबा की सेवा किया है। विभिन्न टीवी चैनल्स में आपका प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं तथा एजुकेशन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। तो अभी आप हम सबको सेफ्टी का आधार, देही अभिमान स्थिति, इस विषय के बारे में अपने अनुभव से वरदान देंगे। आदरणीय शीलू बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि इस समय दुनिया में घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग को ही नरक कहते हैं। द्वापर को नरक नहीं कहा, उस समय रजो स्थिति थी, लेकिन अभी एकदम तमो स्थिति, तमो प्रधान स्थिति आ गई है, इसलिए इसी को ही नरक कहेंगे। पर हम ब्राह्मण बच्चों के लिए नरक नहीं है। हम कहाँ उपस्थित हुए हैं? संगम पर। हमारे सामने नरक के नजारे भी हैं तो साथ साथ आने वाले स्वर्ग के भी नजारे हैं। हम जानते हैं कि इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद वो नई सतयुगी पावन दैवी सृष्टि आनी है और उसकी स्थापना के लिए हम निमित्त बने हुए हैं, जिसके लिए परमात्मा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, जिस राजयोग के द्वारा वो सतयुगी राजाई प्राप्त होती है। तो हमारे सामने वो सतयुगी दृश्य भी घूम रहे हैं तो कलयुगी दृश्य भी हम देखते हैं, चाहे टीवी चैनलों द्वारा, चाहे अखबारों के द्वारा पढ़ते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में आंखों से देखते भी हैं, चाहे कानों से सुनते भी हैं। जहां भी जाओ वहां पर जो भी समाचार सुनते हैं वो घोर कलयुग नरक के ही समाचार है, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, मारपीट, निंदा, चुगली, बेईमानी, जितने भी नकारात्मक शब्द डिक्शनरी में हो सकते हैं वो सब अभी देखने को मिल रहे हैं, और सत्युगी दुनिया में इनका नाम निशान नहीं होगा। नाम निशान नहीं होगा ये बहुत बड़ी बात है, और जिसका नाम निशान सतयुग में है वो अभी नाम निशान नहीं है। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट को हम संगम पर अनुभव कर सकते हैं, दोनों को, जो कलयुग नरक में है वो सतयुग का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भी बाबा ने कहा कि लोग तो यही समझते हैं कि ये दुख तो सदा ही है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी थे, सब युगों में थे, तो इसीलिए सब युगों में है तो अभी है तो क्या बड़ी बात है। चलो उस समय एक दो होंगे, अभी अनेक है, उस समय भी थे जरूर, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये कितनी बड़ी भ्रांति है, कितनी बड़ी भूल है। परंतु ये शास्त्र लिखने वाले हैं तो मनुष्य, तो मनुष्य जरूर शास्त्रों से ऊंचे हैं जिन्होंने लिखा है। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर, आजकल सुपर सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, बहुत पावरफुल, बहुत उसमें है सब कुछ, लेकिन बनाने वाला तो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो अपने आप तो नहीं आ गए। तो ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क उस कंप्यूटर से ऊंचा होगा ना जिसने वो कंप्यूटर बनाया। तो शास्त्र चाहे किसने भी लिखे, लेकिन जिसने लिखे वो मनुष्य ही था। तो कई बार बाबा कहते हैं फिर भी शास्त्रों में सत्य था, जो वेदों में लिखा है नेति नेति, ईश्वर के अंत को पाना असंभव है, वो सच बोला, सच लिखा था, क्योंकि द्वापर में लिखे गए थे शास्त्र। और उस समय के जो भी ऋषि मुनि थे जिन्होंने भी लिखा वे सब रजो प्रधान थे, लेकिन अभी कलयुग में जबकि तमो प्रधानता का बोल बाला है, तो उस नेति नेति शब्द को खत्म कर दिया, नहीं जानते, नहीं अंत, ये भूलकर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, या मैं ही भगवान हूँ यही कह दिया, तो मानो उस परमात्मा को भी कोई नहीं जानता, आत्मा को भी कोई नहीं जानता, न उस सत्य की दुनिया को जानता है। और भारत में रहकर ये भी हम भूल गए हैं कि ये भारत तो भगवान का जन्म स्थान है, ये भारत तो देवभूमि थी, भले कहते हैं लेकिन उस रूप से समझते नहीं है। चलो कहते भी हैं कि देवभूमि थी, पर हम ही देव थे ये तो कोई जानते ही नहीं है, भले नाम तो अपने ऊपर रखवा देंगे देवताओं के। साउथ इंडिया में तो हम विशेष रूप से देखते हैं कईयों के नाम इतने सुंदर सुंदर देवी देवताओं के ऊपर ही नाम होते हैं, बाबा वर्णन भी करते हैं मुरलियों में। शिव बाबा के भी बहुत नाम है, वो भी अपने ऊपर रखवाते हैं, देवताओं के कई नाम अपने ऊपर रखवाते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि भाई नाम तो बड़ा सुंदर है आपका पर गुण भी है, तो कहेंगे क्या बहन जी गुण कहाँ से आएंगे, तो माँ बाप ने रख दिए। एक भाई था जिसका नाम था शिव राम कृष्ण भाई, शिव भी राम भी कृष्ण भी, तीनों ही उसी के एक ही के नाम थे। अब शिव राम कृष्ण इतना लंबा नाम कौन बुलाएगा, तो कोई उसको शिव बुलाते थे, कोई राम बुलाते थे, कोई कृष्ण बुलाते थे, एक ही बुलाएंगे तीनों में से। लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता था, वो कहता था तीनों बुलाओ तब मैं आपको जवाब दूंगा, हाँ मेरा नाम फुल यही है, ऐसे नहीं खाली शिव बुलाया, राम बुलाया, कृष्ण बुलाया। तो हम तो कहते हैं देवताओं के फिर भी सिंगल सिंगल नाम है, कृष्ण अलग होगा, राम अलग होगा, शिव अलग है, पर यह एक ही व्यक्ति के तीन नाम, लेकिन पूछो तीनों के गुण हैं तो गुण तो है ही नहीं। चलो माँ बाप ने बड़े अच्छे ख्याल से रखे होंगे उनका नाम, परंतु उनसे प्रेरणा क्या ली। कई बार नाम के पीछे देव या देवी भी लिखते हैं, लाल देव, राम देव, फलाना देव, या शांति देवी, प्रेमा देवी, फलानी देवी, पर वो देव देवी भी केवल नाम मात्र रह गया, वो गुण तो है नहीं। तो देखें कि उस अंतर को भी हम समझ सकते हैं। और इतना जो कलयुग में इन विकारों का बोलबाला है और सतयुग में नाम निशान भी नहीं रहेगा, और इतना बड़ा ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके लिए निमित्त कौन बनेंगे? हम बच्चे ही। भले हम कहते हैं कि ये परमात्मा का कार्य है, लेकिन परमात्मा का कार्य भी करवाएगा भी तो परमात्मा अपने बच्चों से ही ना, खुद तो छू मंत्र से या प्रेरणा से नहीं करवाएगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि प्रेरणा से मैं कैसे करूंगा, मुझे तो भगवानो वाच करना है, बोलना है। तो भगवानो वाच के लिए तो शरीर चाहिए, मुख चाहिए, ज्ञान देना है, मैं ज्ञान का सागर हूं, तो उसके लिए जरूर मनुष्य तन चाहिए, मैं आता हूं। प्रेरणा से मनुष्य समझेंगे भी कहा। आज कोई रेडियो हम ऑन करते लेकिन वो बहुत कमजोर है, उसकी बैटरी डाउन है, सब कुछ डाउन है, और हम चाहते हैं कि बहुत दूर का रेडियो स्टेशन हो। अब हमारा जो रेडियो का जो रिसीवर है वो इतना कमजोर है तो कहाँ वो कैच कर सकेगा। बहुत पावरफुल रिसीवर चाहिए तभी तो कैच कर सके। तो परमात्मा तो इतना सर्वशक्तिवान और हम तो कैसे कमजोर, कहाँ रिसीव कर सकेंगे। इसीलिए संकल्प से काम नहीं चलेगा, वाणी से काम चलेगा। इसलिए फिर प्रत्यक्ष में आना पड़े, वो स्वरूप दिखाना पड़े, तब उनसे मनुष्य प्रेरणा ले। तो कैसे बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया और अपना परिचय हमें दिया। आज भी अगर कल की मुरली देखे, बाबा ने कैसे ये चैलेंज किया कल या परसों कि ये धर्म पिताएं भी जो है उनको भी परमात्मा का सत्य परिचय नहीं था। सत्य परिचय अगर होता तो सब परमात्मा को जान जाते होते ना। अभी भी यही प्रश्न है, हु इज गॉड, गॉड कौन है, परमात्मा कौन है। कल भी हम किसी वेबसाइट में देख रहे थे, इज क्राइस्ट रियली गॉड, ये प्रश्न अभी तक प्रश्न है। मना प्रश्न है, आखिर ईश्वर कौन है, किसको कहेंगे, अभी तक किसी को पता ही नहीं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये कार्य दिया है कि उस नशे निश्चय से, उस नशे से परमात्मा का परिचय दो सबको। आज भी बाबा के लास्ट मुरली के लास्ट महावाक्य थे, जिनको खुद नशा होगा तो वो नशे से दूसरों को परिचय देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा उस नशे से परिचय देते थे शिव बाबा का। बाबा ने उस दिन भी कहा कि एक ही चित्र पर इतना समझाओ, जब तक वो समझे नहीं कि परमात्मा कौन है तब तक उनको आगे मत बढ़ाओ, लिखा लो परमात्मा कौन है, अभी समझा आपने। फिर गीता का भगवान, ये भी बाद में आएगा, पहले परमात्मा कौन है तब माने ना कि वही गीता का भगवान है। तो इसीलिए वो कौन होंगे वो देने वाले, हम बच्चे ही। लेकिन हम बच्चे वो तब दे सकेंगे, बाप का नाम तब बाला कर सकेंगे जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी। और एक तो नाम बाला कर सकेंगे ऊंची स्थिति होने से, और दूसरा उस जो अशुद्ध स्थिति है संसार की उसके वातावरण से हम बच सकेंगे। नहीं तो नेगेटिव का प्रभाव इतना ज्यादा है, जो पॉजिटिव का प्रभाव आजकल बहुत कम पड़ रहा है, नेगेटिव का ही बोलबाला है। इसीलिए भी आजकल जो न्यूज भी कहते हैं, व्हाट इज न्यूज, ओनली बैड न्यूज इज न्यूज, गुड न्यूज इज नो न्यूज। पहले जमाने में कहते थे नो न्यूज इज गुड न्यूज, माना कोई समाचार नहीं आया, टेलीफोन नहीं आया, तार टेलीग्राम पत्र वत्र कुछ नहीं आया, किसी ने कुछ संदेश नहीं दिया, माना ठीक ही होगा, नहीं तो आ जाता था समाचार। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, और आजकल कहते गुड न्यूज इज नो न्यूज, अपोजिट हो गया है, गुड न्यूज इज नो न्यूज, ओनली बैड न्यूज इज न्यूज, केवल बुरा समाचार ही समाचार है, अच्छा समाचार समाचार ही नहीं है। और वही बुरा समाचार ही लोग सुनना चाहते, अच्छा समाचार भी सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति हो गई है। किसने 100 अच्छी बातें कही होगी परंतु एक बुरी बात मान लो कही, तो वो बुरी बात का ही वर्णन होगा, वो 100 अच्छी बातें जो कही वो तो भूल गई, ऐसा ही होता है। एक सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जरा सा एक दाग होगा, उस दाग पर ही सबकी नजर जाएगी, इतना सफेद है उस पर नजर नहीं जाएगी, है ना, वो दाग। अब इसको भी अगर हम एक पॉजिटिव रूप में ले तो बहुत बड़ी सीख है इससे, कि इतना सारा सफेद एक काला दाग क्यों होना चाहिए। इसलिए सफेद वस्त्र धारण करने वाले बड़ा ध्यान रखते, जरा सा भी दाग न लगे, नहीं तो बुरा लगेगा, और अगर लगा तो सबकी नजर उस पर ही जाएगी, या ये दाग है ये दाग है, हम कहेंगे हाँ पता है, और क्या कहेंगे, है तो क्या कर सकते हैं, नहीं निकल रहा है, या निकालेंगे जा करके धुलाई करने से, अभी तो लग गया, अभी तो कहाँ धुलाई होगा। परंतु बुराई स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे सफेद पर काला रंग आ जाए तो कितना स्पष्ट, वो काला ही दिखेगा, सफेद गुम हो जाएगा, पर काले पर आप सफेद चढ़ाओ तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि काले पर सफेद मुश्किल होगा चढ़ाना, पर सफेद पर काला तो फटाफट चढ़ जाएगा। तो नेगेटिव की शक्ति आज की दुनिया में इतनी ज्यादा है, जो पॉजिटिव का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज बाबा ने, कल बाबा की मुरली में था कि, या कल या परसों था, कि सेफ्टी का साधन, सेफ्टी का आधार देही अभिमानी स्थिति है, ये हेडिंग का पहला वाक्य था बाबा की मुरली का। देही अभिमानी स्थिति ही सेफ्टी का आधार है। तो बहुत मेरा विचार सागर मंथन चला और मैंने सोचा इसी टॉपिक पर मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि बाबा ने तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये शुरू से हमें कहा और अंत तक यही पाठ हमको पढ़ाएंगे, जब तक हमने पूरा पाठ पढ़ नहीं लिया है आत्मा का। परमात्मा का भी पाठ है पर आत्मा का भी पाठ पहले है, क्योंकि आत्मा का अगर पाठ पक्का हो गया तो परमात्मा को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन परमात्मा है। तो शुरू से लेकर के बाबा ने आत्मा का हमें पाठ पढ़ाया है। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा अवतरित हुए, उसी समय भी बाबा ने उनको यही कहा तुम एक आत्मा हो, और ब्रह्मा बाबा को एक लगन लग गई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब भी किसी को देखे बाबा कई आत्मा है, बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा कहते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, दीवार पर लिख लेता था यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा, ताकि यशोदा भी पढ़े, उनकी युगल भी पढ़े कि वो आत्मा है।
युग में तुमको आना है।
तो जिस प्रकार यज्ञ की शुरुआत में आत्मा का ज्ञान बहुत दिया गया और उस आत्मिक स्थिति में ही स्थित रहे, वैसे ही अंत के समय में भी ये आत्मा की स्थिति ही काम आएगी। जो बाबा कहते हैं, अंत में आप सहज ही देह को छोड़कर वापस घर चलेंगे, आत्मा सहज इस पुराने चोले को छोड़ेगी जैसे मक्खन से बाल, लेकिन वो तब होगा जब आत्मिक स्थिति होगी। और उसके साथ साथ चाहे शरीर में है तो भी अगर आत्मिक स्थिति है तो कई प्रकार की रुकावटें, कई प्रकार के विघ्न, समस्याएं, उनसे हम बच सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसकी और गहराई में जाएं, एक एक विकार को देखिए, इन सब विकारों का जो कारण है वो है ही देह अभिमान। काम वासना का कारण भी तो देह अभिमान है। वास्तव में ये पंच शरीर की पंच इंद्रियां, इनका ही विकराल स्वरूप, इनके आकर्षण का विकराल स्वरूप ही तो विकार है। काम विकार क्या है? काम विकार ये त्वचा, शरीर, ये जो शरीर पर त्वचा है, चमड़ी, इस चमड़ी का आकर्षण को ही उसका विकराल स्वरूप काम वासना है। कोई चीज पर आकर्षित हो गए, लगेगा कि जरा इसको हाथ तो लगाएं। अब ये त्वचा या चमड़ी का आकर्षण है। किसी म्यूजियम में जाएंगे, वहां सब जगह लिखा रहता है, कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, सब जगह एक एक चीज के आगे लिखा रहता है। अभी तो चलो वो रस्सी लगा दी है, शीशे के अंदर बंद है, पहले सब खुला होता था, क्योंकि बस लिखा है हाथ मत लगाइए, कोई हाथ नहीं लगाता था। लेकिन ये सब बंद रखने के बावजूद भी कोई चोरी भी कर लेंगे, पता भी नहीं चलता है। हाथ लगाना तो दूर, चोरी भी कर लेंगे, उठा भी लेंगे, सब कुछ तोड़ भी देंगे। क्यों हाथ लगाएं? जरूरत क्या है? हमको तो चाहिए नहीं, ये तो सबके लिए है। चलो बस देखा पूरा हुआ, पर दिल हो भी हाथ लगाएं। क्या आकर्षण है, क्या मिला उससे? बस चमड़ी का आकर्षण, और उसी का ही विकराल स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं, काम वासना या रेप या बलात्कार, ये जो कुछ भी आप कहो उसमें भी पता नहीं क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं आज की दुनिया में। इतना विकराल स्वरूप हो गया है जो नारी की सुरक्षा का एक एक ऐसी प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देह अभिमान का बोलबाला है, त्वचा का आकर्षण का बोलबाला है। पर कैसे हम उसमें अपनी सुरक्षा रख सकते हैं? क्योंकि सही बात है कि अगर हम लड़ना चालू करेंगे तो सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो ज्यादा बलशाली है शारीरिक रूप से। और एक की बजाय अगर 10 लोग आ जाए तो वो चाहे वो अकेली नारी क्या करेगी। परंतु उसका आधार क्या है उस सुरक्षा का? देही अभिमानी स्थिति। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक माता ने बहुत सुंदर अपने अनुभव की बात सुनाई कि वो बाबा के ज्ञान में काफी वर्षों से चल रही है, तो पवित्रता उसको माना, बाबा के आगे व्रत लिया हुआ है उसने, मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगी, या पति मानता नहीं है। लेकिन कैसे उस पति को उस अपनी आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा का बनाया और बाबा के ऊपर जैसे उसके निश्चय बैठा। एक बहुत सुंदर अनुभव है उस माता का कि क्या हुआ कि एक दिन माना नवरात्रि के दिन थे, वो देवी का भगत तो था ही, तो देवी की पूजा की। और देवी के दिनों में तो नवरात्रियों में तो वैसे ही पवित्र रहेंगे क्योंकि पूजन करते हैं, तो वो 9 दिन तो चलो पवित्रता का व्रत बहुत अच्छी तरह से पाला। परंतु इन 9 दिनों के अंदर उस माता ने अपने अंदर वो आत्मिक बल इतना भरा, इतनी बड़ी शक्ति अपने अंदर धारण की। बस यही अपने को कहती थी, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। अब उसका पति तो शक्ति का भगत था। अब जैसे 9 दिन पूरा हुआ तो फिर पूरा हुआ वो सब जो भी व्रत व्रत सब पूरा हुआ और फिर उसकी दृष्टि वासना की बनी। लेकिन ये तो 9 दिन में इतनी शक्तिशाली हो गई तो जब उसका पति चाहे या वो पुरुष जैसे नजदीक आया उसको तो देवी का साक्षात्कार हो गया, अपने पत्नी से देवी का साक्षात्कार हो गया। सचमुच ये कैसे हुआ? बिल्कुल उसके नजदीक भी नहीं आ सका, वो शक्ति रूप ही उसको देख रहे। जिस दुर्गा की पूजा कर रहा है वो दुर्गा रूप में ही अपनी पत्नी को देख रहा है। पत्नी गाय है, वो दुर्गा बैठी है शेर पर सवारी, ऐसे उसने अनुभव किया। तो वो तो डर गया, पहले तो शक्ति का पूजन किया 9 दिन, लेकिन अब पत्नी को ही उसी रूप में देखा तो वो तो डर गया। वो मानो पूजा क्या थी, ऐसे दिखावे की होगी तो डर जाएगा जब पत्नी उस रूप में देखे। तो बस वो जो उसने जो अनुभव किया उस समय डर तो गया, परंतु बिल्कुल उसकी जैसे पानी पानी हो गया, बिल्कुल इतना डर गया जो उसी समय अपने पत्नी के पांव छुए जो दुर्गा रूप में उसने देखा, कहा माताजी मुझे माफ करो, मैंने आपके ऊपर जो अत्याचार किया है भगवान मुझे माफ करे। तो सचमुच वो अपना अनुभव सुना रही थी कि कैसे बाबा ने मुझे मदद की, लेकिन वो 9 दिन वहाँ उसका व्रत चला और मेरा व्रत ये चला कि मैं शक्ति हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं अम्बा हूँ, मैं माँ हूँ, माँ शिव शक्ति रूप हूँ। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि आत्म अभिमानी स्थिति में उसकी कैसी सुरक्षा हुई। तो बाबा कहते हैं अंत के समय पर तो ये काम वासना का स्वरूप तो और बढ़ेगा, ये मत समझो कि कम होगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो हम कहाँ तक युद्ध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना जरूरी, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। हम बाह्य चीज को इतना नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि बाह्य विघ्न तो और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हम उसके लिए अंदर की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, तब वो अंदर की शक्ति जो है वो तब वो बाहर की शक्ति का सामना कर सकेगी। बाहर की शक्ति के सामने आई तो भले एक ने विजय पाई, फिर वो विजय पाएगा, फिर वो हार जाएगा, ऐसा ही होगा। जैसे हम अभी कुछ साल पहले मैं स्विट्जरलैंड गई थी, वहाँ यूरोप के टूर पर गई थी। तो स्विट्जरलैंड में जिनीवा शहर है, जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो देखने जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस भी 1945 में तब बना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ और ये अंदर में सोचा सभी देशों ने कि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि एक एटम बॉम्ब गिराने से पूरे दो शहर नष्ट हो गए, तो अभी तो इतने सारे एटम बॉम्ब्स बन सकते हैं क्योंकि पता चल गया ये एटम बॉम्ब कैसे बनता है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस बना कि हम ऐसे मिल करके नेशंस रहें कि तीसरा विश्व युद्ध हो ही नहीं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का यही कार्य होता है, जहां जहां देश लड़ रहे हैं वहां अपनी शांति सैनिक भेजते हैं, भाई शांति रखो, लड़ो नहीं। क्योंकि अगर दो देश भी लड़े तो विश्व युद्ध का रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है। तो वहां पर वो स्विट्जरलैंड में एक बहुत वो जो जिनीवा शहर है वहां पर यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहां इनसे थोड़ा सा छोटा हॉल होगा, काफी बड़ा हॉल है, थोड़ा छोटा होगा इनसे, कॉन्फ्रेंस हॉल से तो बड़ा हॉल है। तो वहां पर वो दीवार है एक, माना हॉल में उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, लेकिन एक दीवार पर बहुत बड़ा चित्र बना हुआ है। वो चित्र जो है उसपे 3 भाग है और उसकी हेडिंग लिखी गई है हु इज द विनर, जीतने वाला कौन है जीतने वाला। तो उसमें 3 भाग दिखाए हैं। एक भाग में दिखाया है कुछ सैनिक जो अपने घुटनों पर खड़े होकर के सिर नीचे करके जैसे बड़ा दुख अंदर में व्यक्त कर रहे हैं सिर नीचे करके घुटनों पर खड़े होकर के, और दूसरे तरफ है सैनिक जो घुटनों पर खड़े हैं लेकिन सिर ऊंचा है ऐसे तैयारी कर रहे हैं फिर से लड़ने के लिए, और बीच में जो है वो जैसे सारी शवें पड़ी है शमशान हो चुका है मानो मुर्दे हैं चारों तरफ। ये तीन ऐसे दृश्य दिखे। अब जो गाइड था उसने हमें बताया कि ये आप दृश्य देखिए और इस दृश्य में आपको क्या समझ में आ रहा है। हम आपको इतना बता रहे हैं कि एक युद्ध हुआ है और ये दो तरफ है और ये दोनों तरफ के सैनिक हैं जो मारे गए हैं, इतने हजारों मुर्दे पड़े हैं सब मारे गए हैं। अब आप बताइए युद्ध समाप्त हुआ है, एक एक भाग ने जीता है एक भाग ने हारा है, तो आप बताइए किस भाग ने जीता है किसने हारा है। वो जो अपने घुटनों पर खड़े होकर के सिर नीचे करके दुख अनुभव कर रहे हैं या वो जो घुटनों पर खड़े होकर सिर ऊंचा करके ऐसे खड़े हैं, क्या कहेंगे किस भाग ने कौन से वाले वो चित्र ने में जो सैनिक है जीता है। अब किसने कहा वो भाग किसने कहा वो भाग किसने कहा जो मर गए उन्होंने जीत लिया, मतलब तीन उत्तर मिले। वास्तव में क्या था फिर उसने समझाया कि जो घुटनों पर खड़े हैं और सिर नीचे करके ऐसे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं इस देश ने जीता है, और जो अपने घुटनों पर खड़े होकर के ऐसे करके खड़े हैं उन्होंने हारा है, वो देश हार गया है और ये जीत गया है। लेकिन जिसने जीता है उसको अपनी जीत की खुशी नहीं है क्योंकि वो तो सिर नीचे करके उदास है, वो उन लोगों को देख रहे हैं जो मर चुके हैं, परंतु जो हार चुके हैं उनका सिर बुलंद है। क्यों? क्योंकि उनको ये नशा है कि हम हारे भले हैं लेकिन हम जीत के रखेंगे, हम फिर से लड़ेंगे, हम फिर से होंगे, हम फिर से ये करेंगे। तो युद्ध हुआ तो क्या हुआ, हार जीत कहाँ हुई, वो फिर लड़ेंगे। कौन सा वो युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध तो समाप्त हुआ ही नहीं, ये तो टेम्पररी हुआ। तो कौन जीता कौन हारा, इसलिए ये सोच ही नहीं करो कि कोई हम जीतेंगे या ये हारेंगे, सभी हारेंगे। और जीत किसकी होगी, जो बाबा कहते जहां जीत वहां जन्म, जीत उनकी ही होगी जो देही अभिमानी स्थिति में होंगे, जिसको ही बाबा ने जो अभी ताजी मुरली चली 24 अक्टूबर को, जिसमें बाबा ने कहा कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो, अपनी शुभ भावना शुभ कामना से वृत्ति का द्वारा वायुमंडल में परिवर्तन लाओ, और वो ही कैसे होगा, देही अभिमानी स्थिति से ही होगा। कोई भी सामने आए हमारे लिए वो सुरक्षा का कवच हमारी आत्माभिमानी स्थिति बन जाए, हमारी पवित्रता बन जाए। जैसे रामायण में सीता के लिए दिखाते हैं कि सीता के आगे रावण आने की हिम्मत नहीं रख रहा था, लक्ष्मण रेखा उसके आगे थी, या चाहे वो कोशिश भी कर रहा था उसके आगे तिनका था कि सीता के आगे उस तिनके के भी नजदीक नहीं आ सकता था क्योंकि पवित्रता की शक्ति थी सीता की। फिर भले एक और कहानी बना दी है रामायण में कि राम ने तो अपनी जो रियल सीता थी वो तो अग्नि को सुपुर्द कर दी, वो अग्नि ने उसको सीता दी कि हाँ इसको आप ले जाओ आपकी सीता सुरक्षित है अग्नि के पास, हाँ ऐसे भी कुछ है रामायण का। तो चाहे इसको योग अग्नि कहो, चाहे इसको पवित्रता की शक्ति कहो, चाहे इसको शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति कहो, चाहे आत्मिक स्थिति कहो, चाहे श्रेष्ठ वृत्ति कहो, उसके आधार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति ये बहुत ऊंची स्थिति है क्योंकि उसी समय हम जैसे अशरीरी हो जाते हैं, वो अशरीरी स्थिति, और आत्मा जैसे उड़ता पंछी बन गए, वो शरीर वहीं रह गया। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि एक पक्षी वो दाना चुग रहा है, अचानक कोई बिल्ली आ रही है, कोई बिल्ली आई, अब बिल्ली को देख करके वो पक्षी, छोटा सा पक्षी, कबूतर को कुछ भी कहो, वो डर भी सकता है और डर के मारे वो वहीं खड़ा हो सकता है। वो तो दाना चुग रहा था और बिल्ली आ गई उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके पास दूसरा भी सोर्स है। अपनी सुरक्षा पक्षी की किस बात में है? अगर आंखें ऐसे बंद करके बैठ जाएगा डर के मारे, थोड़ी उसकी सुरक्षा होगी, वो तो पकड़ लेगी बिल्ली। तो उसकी सुरक्षा किस में है? उड़ जाए, पंछी को पंख तो है ना, उड़ जाए। अब उड़ गया तो बिल्ली थोड़ी पीछे उड़ेगी, वो उसके पास तो पंख नहीं है, बिल्ली को तो पंख नहीं है ना जो उड़ करके उसको हवा में पकड़ेगी, वो तो उड़ गया, पक्षी तो उड़ सकता है। अब वो जो मेरे सामने वो व्यक्ति नहीं आया है, जो परीक्षा आई, जो बात आई, जो विघ्न आया, वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो परिस्थिति के रूप में है। अब वो परिस्थिति मेरे सामने आई तो उस समय मेरी स्थिति क्या बने? समझो कोई लड़ने आ गया, मैं भी लड़ना शुरू कर दूंगी। चलो कोई काम का वासना वाला आ गया और मैं भी उनसे उनको अटैक करना शुरू कर दूंगी, वो ही जीतेगा, क्योंकि मैं तो डर रही हूं अंदर, वो डर के मारे अटैक कर रही हूं। लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति ऐसी हो जाए जो मेरे नजदीक भी ना आ सके, ऐसे उसकी मेरी शक्ति हो, उसको लाइट ही लाइट दिखाई दे। अंत के समय बाबा कहते हैं वो ऐसा ही होगा, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का मिसाल है कि उस समय शुरू में तो बहुत विरोध भी हुआ, तो कईयों ने सोचा कि हम इसकी हत्या कर देंगे ब्रह्मा बाबा की। तो एक सरदार को तैयार किया और उसको तलवार भी थी या कुछ था उस समय, तो कैसे कि हम बाबा की हत्या कर देंगे। और बाबा तो योग में बैठे थे, बाबा को तो पहले से पता चल गया जैसे कि ये कुछ है। उस समय वो इतनी योग की स्थिति में थे और वो व्यक्ति जैसे ही बाबा के सामने आया, उसको तो बाबा से गुरु नानक दिखाई दिया। अभी गुरु नानक को कुछ करेंगे क्या? गुरु नानक को थोड़ी अटैक करेंगे, उनको गुरु नानक दिखाई दिया तो कैसे अटैक करेंगे। इतना वो माना पिघल गया, उसके पैर छुआ और उसे माफी मांगी बाबा से, बाबा मैं तो कितना बड़ा पाप करता, आप तो महान हो, आप तो कितने ऊंचे हो, आप तो कितने श्रेष्ठ हो। तो ये किस आधार पर हुआ? क्योंकि बाबा उसी अशरीरी स्थिति में थे। हम कई बार अनुभव सुनाते हैं, हम दादियों के आगे जाते हैं, दादियों की भी स्थिति इतनी ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है। बाबा मम्मा की तो थी, दादियों की अभी हम देखते हैं, बड़ी बहनों की हम देखते हैं। हम कई बातें सोच के जाते हैं, हम ये बात पूछेंगे उनसे, ये बात पूछेंगे, ये कहेंगे, ये बताएंगे, ये करेंगे, बहुत कुछ सोच के जाते हैं। लेकिन जैसे ही दादी के आगे आते हैं ना, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। वो क्या सोच के आए थे वही भूल जाता है, कैसे भूल जाता है? इतना कोई इंटेलिजेंट तो है, मेमोरी भी शार्प है, क्यों भूल जाता है उस समय? क्योंकि उनकी स्टेज इतनी ऊंची है और इस ऊंची स्टेज के कारण से वो हमारी स्टेज अगर कम है तो वो ऊंची स्टेज पर हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। ऊंची स्टेज पर पहुंचने के हमको भी उस ऊंची स्थिति तक जाना पड़ेगा। हवाई जहाज ऊपर चला गया, नीचे सब रह गया, पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ गया, वो पहाड़ भी उनके लिए कुछ नहीं है, बादल भी उनके लिए कुछ नहीं है, उनके भी ऊपर चला गया। तो ये स्थिति ऊंची जो आत्मिक स्थिति है, माना वो देही अभिमानी स्थिति इतनी ऊंची स्थिति है जो उसके आधार से कई विघ्न अपने आप टल जाएंगे। वो लगेगा कि विघ्न आया, पर न्यारे बन जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, देह से न्यारे ऊंचे उठ जाओ, वो सामने से कुछ कर ही नहीं सकेंगे, वो विघ्न खत्म हो जाएगा उसी समय, वो जल जाएगा, ऐसा भी अनुभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा बार बार हमें यही कहते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि अचानक तो होना ही है, बता के नहीं आना है विघ्न। अब ये फिलीपींस में इतना बड़ा तूफान आया, बहुत जबरदस्त तूफान आया, एक दो तो पूरे शहर के शेर खत्म हो गए हैं, हजारों मरे हैं, लाखों मरे, कुछ अंदाजी नहीं है, गिनती नहीं है। इमरजेंसी लग गया है फिलीपींस देश में, क्योंकि इतना जबरदस्त तूफान आया, पूरे शहर दिखाते हैं कैसे सारा शहर ही तबाह हो गया है, और शवे तो पेड़ों पर लटक रहे हैं, ये सब दिखाया, शव शरीर पेड़ों पर लटक रहे हैं, कौन किसकी सुरक्षा करेगा, क्या करेगा। अब वहां पर बाबा की गीता पाठशाला थी, तो वो बहन देखो कैसे बाबा ने उसको बचाया। अब इतना कुछ तूफान आया, वो समय वो भी कुछ नहीं कर सकी बहन, क्योंकि बहुत जबरदस्त था तूफान, और बस इतना ही उसको बाबा की टचिंग मिली, तुम घर से बाहर निकलो, क्योंकि तूफान घर से बाहर निकलो, तूफान तो आया तो घर तो यानी उस समय घर से बाहर निकली तो जैसे तूफान तो थमा हुआ था, कुछ हद तक थमा हुआ था, तो टचिंग आई जैसे बाबा की और वो निकल आई। और तब तक तो तबाह तो बहुत कुछ होगा, पहले तो वो अंदर ही थी मकान में, और जैसे बाहर आई तो उसका मकान गिरा, अगर वो मकान के अंदर होती तो वो खत्म हो जाती होती, और जैसे बाहर आई हवा तो थी, लेकिन उसी समय वो बाबा को कहते बाबा मैं तो आपकी हूँ, बाबा 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 कर रहे थे, गीता पाठशाला चलाते, अभी वो उनके और स्टूडेंट्स कहाँ उसको पता नहीं, लेकिन उसी समय हेलीकॉप्टर आया उसी समय, और हेलीकॉप्टर ने उसको देखा कि वो ऐसे कर रही है, उसी समय वो रस्सी वो जो लैडर है ना वो भेजते हैं क्या बोलते हैं वो लैडर भेजा और ये सीढ़ी भेजी और एकदम से उसके पास पहुंची और सीढ़ी पर चढ़ के पहुंच गए और वो मनीला चले गए जो राजधानी है ना? और मनीला पहुंच करके उसने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे मुझे बाबा ने ही बचाया, क्योंकि मैं तो बाबा की याद नहीं बैठी थी, पता था ये जैसे मालूम तो था ये होगा, पर कहाँ लगेगा कहाँ जाएगा पता ही नहीं, ऊपर जाने वाला था वो नीचे आ गया, अब कुछ पता ही नहीं था किसी को, अचानक घेर लिया, कोई भी उसके लिए किसी भी प्रकार की कहीं भी सुरक्षा उस समय थी नहीं, जो भाई चलो पहले थोड़ा सा कोई बच गए कोई भाग कोई गए, पर तो इतना भी नहीं टाइम मिला जो कुछ पहले से सावधान भी कर सके, तो अचानक अचानक, और फिर उसके लिए जैसे बाबा के तेवर रेडी तैयार है, कुछ भी हो जाए क्या एक सेकंड में मैं न्यारी हो सकती हूँ, पता है अचानक तो एक सेकंड में मैं न्यारी हो सकती हूँ, क्योंकि और तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, न भाग सकते न अपने आप को बचा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस न्यारा ही हो सकते हैं, अंदर की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, कि बाहर की वो हलचल में हम हलचल में ना आए, वो परिस्थिति में हम विचलित न हो जाएं, रोए नहीं चिल्लाए नहीं हाहाकार नहीं मचाएं हाय हाय नहीं करें, बस बाबा अंतर चले जाओ, और अंतर चले जा करके और देखो कैसे बाबा की शक्ति मिली, बाबा का वो सुरक्षा कवच बन जाता है। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, एक बिहार में कहीं भूकंप आया था, एक जबरदस्त भूकंप आया था, तो वो बहन अपना अनुभव सुना रही थी, सवेरे 4:15 बजे के बीच में आया, तो उनका पूरा फ्लोर था, वो बाबा का सेंटर है, तो जैसे ये भूकंप आया तो ये बाबा के कमरे में बैठे थे, दो बहनें रहती तीन बहनें सेंटर पर रहती थी, तो वो बाबा के कमरे में बैठी थी, और जैसे बाबा के कमरे में मना बैठी थी सब जोर से भूकंप आया। अब जो पोर्शन जहां बाबा का कमरा था वो इंटैक्ट रहा, और जो बेडरूम था वो सारा गिर गया। अगर वो उस समय सोई हुई होती तो क्या होता है, वो बाबा के कमरे में थी इसीलिए वो कैसे बच गई। और पता नहीं कहते हम लोग तो अचानक हम 3 बजे उठ गए उस समय, बस जैसे खींच हुई बाबा के कमरे में जाओ बाबा के कमरे में जाओ बाबा के कमरे में जाओ, और एकदम बाबा के कमरे में बैठो, इतना अच्छा बाबा ने अनुभव कराया, और एकदम से धमाका हुआ और वो जो किचन था बेडरूम था वो सब नीचे हुआ, और बस यहाँ क्लासरूम था बाबा का कमरा था वो सब बच गया, क्लासरूम बच गया तो वो सब बच गया, बाकी सब खत्म हो गया। तो मानो ये आप सोचो कि क्योंकि योग की शक्ति की कमाल थी उस समय, और उनको इतना अच्छा अनुभव जो कुछ हुआ भी ना, जैसे उनको कुछ लगा ही नहीं, भले बाद में सुना ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन वो खुद सेफ रहे। किस आधार पर? हम तो अपना अनुभव सुनाते, मैं 10-5-7 मिनट में अपना अनुभव शेयर करूं कि कई साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारा। हम गाड़ी में बैठे थे, हम लोग और भी थे, 4-5 जने और भी थे, और अचानक कैसे कोई व्यक्ति आ गया सामने, ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की उसको, लेकिन बचा नहीं सके, और टायर उसके पैर पर लग गया, वो गिर गया। वो कोई गांव का था, उसके सिर पर लकड़ियां थी, जैसे ये आबू में लकड़ियां लेके जाते हैं, वो लकड़ियों का जो बंडल था वो उड़ा, हमारी गाड़ी के ऊपर आया, गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। अब ड्राइवर ने सोचा मैं इसको रोकूं या मैं इसको टर्न करूं, तो अगर समझो टर्न भी करते तो एक खाई थी, उस खाई में जाके गाड़ी जा सकती थी, क्योंकि कहाँ टर्न कर रहे हैं पता नहीं चलता उस व्यक्ति को बचाने के लिए। या तो एक बहुत बड़ा खंभा था तो खंभे को लग सकता था, ये खाई में जा सकता था। बस उसी समय उसने टर्न तो किया, पता नहीं एक्सल टूट गया या ब्रेक फेल हो गया, क्या हुआ समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, मैं पीछे बैठी थी, आगे ड्राइवर और एक बैठा था, और हम 3 बहनें पीछे थी। उसी समय मैं तो समझ 2 सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक गई और हमको लगा बस गई। तो उसी समय मैंने बाबा को कहा, बस बाबा याद, हमको कुछ याद नहीं आया। मैंने कहा बाबा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो क्योंकि हमको तो उसके पहले तो पिलर दिखाई दिया, वो खाई दिखाई दी थी, बस यही था कि कुछ होगा, खत्म, बस खत्म होंगे, तो हम आ रहे हैं। और एकदम बिल्कुल अशरीरी हो गई, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो बिल्कुल लाइट के आकार का जैसे शरीर भी दिखाई दिया, कुछ ऐसा अनुभव भी हुआ। अब पर ड्रामा ऐसा था, कैसे बाबा ने हमको, हम लोगों को गोद में ले लिया, क्योंकि सब बाबा के बच्चे थे उस गाड़ी में। और वो जैसे गाड़ी टर्न हुई तो वहाँ केवल वो बुशेज होते ना, ये पेड़ होते छोटे छोटे पेड़, तो वहाँ जाकर के खूब जोर से गिरी और नीचे पड़ी। अब मैं साइड में बैठी थी, मेरे पास में एक पतली सी बहन बैठी थी, उसके बाजू में एक मोटी सी बहन बैठी थी, तो पतली बहन तो नीचे चली गई वो कुर्सी के, और जो मोटी थी वो मेरे ऊपर गिरी। तो लेकिन सब बच गए, मानो जरा सी कोई खरोच आई, कुछ हुआ, कुछ मानो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मक्खन से बाल हो गया, जैसे बाबा ने अपनी गोद में हमें बिठा दिया, गाड़ी वहीं बस ऐसे। मानो आप सोचो, और अगर उस गाड़ी को देखते तो आपको लगता कि इसमें कोई बचा ही नहीं होगा, लेकिन सब सुरक्षित थे। पर वो व्यक्ति जिसको लगा, और जरूर उसका वो तो उसके पैर में चोट आई, उसके सिर को चोट आई, और फिर तो कुछ दिन के बाद उसकी डेथ भी हो गई, क्योंकि ब्रेन में, क्योंकि जबरदस्त एक्सीडेंट था बहुत, और अचानक कहाँ से आ गया पता भी नहीं, यानी कुछ नहीं था आगे, अचानक आ गए, ऐसे कहीं आ जाते उसको बचाने जाओ तो ये सब एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कहने का भाव है कि हम लोग जो थे, कैसे बाबा ने हमको गोद में उठा लिया, क्योंकि बाबा के गीत सुन रहे थे, बाबा की बातें कर रहे थे, काफी दूर से आ रहे थे, और मधुबन जा रहे थे, रास्ते में कहीं पालनपुर के पास हुआ, तो बस। और जब वापस पहुंचे अगले दिन, बाबा का प्रोग्राम था तो बाबा से हम सब मिले, तो बाबा ने बड़ा विचित्र वो मानो जो वरदान भी दिया। बाबा ने कहा कि आपका ड्राइवर पावरफुल था, अभी कौन ड्राइवर पता नहीं, बाबा ड्राइवर। और सबका जो हिसाब किताब था उस व्यक्ति पर जाकर वो, और वो खत्म हो गया, पता नहीं क्या भाव था बाबा का, पर ये बाबा के शब्द थे कि आपका ड्राइवर पावरफुल था, क्योंकि हमारे ये बीके भाई चला रहे थे, और हम सब भी बाबा के बच्चे ही थे, बाबा की बातें ही कर रहे थे, और वो तो गाड़ी चला रहा था, परंतु आपका ड्राइवर पावरफुल था, योग पावरफुल था, आप सबका हिसाब किताब पूरा होकर उस व्यक्ति पर जाके लगा। ये बाबा के शब्द थे। अब भाव तो हमने इतना ही समझा कि बाबा ड्राइवर हमारा रक्षक, और उस व्यक्ति का हिसाब किताब कुछ था, और वो चला, वो खत्म हो, उस समय तो नहीं हुआ, दो तीन दिन के बाद हुआ, उस समय होता तो और बड़ा केस हो जाता, लेकिन था जरूर। पर मेरे कहने का भाव है कि कैसे बाबा की गोद में थे और उस समय अशरीरी हो गए, सब इतने शांत हो गए, इतने शांत, किसी ने कोई आवाज नहीं किया और सब बाबा की याद में थे, तो बाबा ने रक्षा कर ली। ये देही अभिमानी स्थिति की निशानी है। पर मान लो अगर कुछ होता भी, ये थोड़ी कहेंगे बाबा ने रक्षा नहीं की। अब उस आत्मा का पार्ट इतना ही था, कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कुछ साल पहले की बात है कि एक यंग भाई, मतलब अच्छा यंग था, बहुत सेवाधारी, बहुत लगन, बहुत ही लगन थी उनकी। और कैसे वो बाबा की सेवा में जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हुआ और उसी समय उसकी डेथ हो गई। कुछ कई साल पहले की बात है। अब जब भोग लगाया तो कई राज खोले, संदेशी ने बड़े राज बताए, क्योंकि वो जो था यंग था और बंधन में था, उसको उसके परिवार से कोई नहीं ज्ञान में चलता था, बंधन बहुत था। तो बाबा को बार बार यही कहता था, बाबा मेरे बंधन काटो, मेरे बंधन काटो, नहीं तो बाबा बस मुझे ये मुझे अपने पास बुला लो, मुझे नहीं इस ऐसे रूप में रहना है, या तो मेरा सारा परिवार आ जाए और मेरा उस रूप से बंधन कट जाए, या तो मुझे अपने पास बुला लो। बस यही बाबा के आगे रट लगाता रहा। इतनी अंदर में लगन थी सेवा के प्रति, बाबा से इतना प्यार, लेकिन ये बंधन था। तो अचानक एक्सीडेंट जैसे हुआ, डेथ हो गई, फिर भोग लगाया तो पूरा परिवार आया और संदेश में क्या सुनाया कि मैं तो यही चाहता था मेरा परिवार बाबा का बच्चा बन जाए और मैं सेवा में लग जाऊं, तो अभी बाबा मुझे नई सेवा में भेजेगा। बाबा ने भी कहा ये बच्चा यही कह रहा था मुझे नई सेवा में भेजो, मुझे कोई और सेवा में भेजो, मेरा बंधन मुक्त करो, मेरा परिवार आ जाए। अब बाबा ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी, वो परिवार भी ज्ञान में आ गया, इसका बंधन भी खत्म हो गया और बाबा इसको बहुत ऊंची सेवा देगा। मानो अब इसके पीछे क्या राज था हम क्या जाने, वो बाबा ही जाने, परंतु बाहर वाला देखा भगवान, बाबा ने इसको बचाया नहीं, तो देखो इसके पीछे क्या राज था। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति ये सुरक्षा का कवच है, आत्मा की सुरक्षा है। और एक सेकंड में आत्मा देह से न्यारी हो जाए, तो चाहे काम विकार हो, चाहे क्रोध हो, कोई इतना भी क्रोधी व्यक्ति मेरे सामने आए, उस समय मैं आत्माभिमानी स्थिति में रह सकती हूँ कि उसका क्रोध का प्रभाव मुझ पर जरा भी न पड़े, या मैं दुखी हो जाऊंगी, या मैं भी लड़ना शुरू कर दूंगी, मैं भी क्रोध कर लूंगी, मैं भी गुस्से में आके दो चार कह दूंगी, या उसने तो खाली चलो गुस्सा किया, मैं इसको थप्पड़ मार दूंगी, नहीं। क्या मैं उस समय इतना शांत रह सकती हूँ? ये रह सकती हूँ कब, जब मैं आत्मा देही अभिमानी स्थिति में होंगी, जब उसके क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोभ लालच देने वाले भी बहुत होंगे, पर उस समय मैं आत्मिक स्थिति में रहूं और वो आत्मिक स्थिति उस लोभ से हमें बचाए, मोह की जाल से बचाए, अभिमान से बचाए, क्योंकि ये विकराल स्वरूप और आते जाएंगे, अंत में तो इनका और भी ज्यादा विकराल स्वरूप होगा। अंत के समय चारों तरफ से हम घेरे जा सकते हैं, एक तरफ तो हमारे अपने ही संस्कार काम करेंगे, जो पुराने संस्कार अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं वो अंत के समय बाहर आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब सब चुकते होने हैं। तो या तो संस्कार बाहर आएंगे, या तो जो औरों के साथ हमारे हिसाब किताब है वो सामने आएंगे, या तो कोई भटकती आत्माएं वो भी सामने आ सकती, क्योंकि उस समय जो इतना होलसेल में मौत होगा तो कितनी भटकती आत्माएं चारों तरफ होगी, वो भी सामने आ सकती, जिनके साथ कुछ ऐसा हिसाब किताब होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी सारे हिसाब किताब पूरे करो, नई मत बनाओ, कुछ नया नहीं जोड़ो, क्योंकि नई जोड़ेंगे तो ये और ही बंधन बनाएंगे, क्योंकि नया संबंध तो बनेगा नहीं, बंधन ही बनेगा। कलयुग के अंत की ये सारी निशानियां सब बंधन ही बनने हैं, जो भी आप संबंध सोचेंगे वो बंधन ही बनेगा। इसीलिए नया कुछ बंधन मत बनाओ। जिसको संबंध कोई कहे तो कुछ नया नहीं जोड़ो, कहीं पुराने में फंसो मत। तो इसलिए न जोड़ो न फंसो और न छोड़ो, छोड़ो भी नहीं। क्यों नहीं छोड़ो? क्योंकि हिसाब किताब पूरा कहाँ हुआ है? जो आप छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासी थोड़ी हमें बनना है जो हम छोड़ के चले जाएं। हमको सन्यास तो करना नहीं, हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले, बाबा ने हमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग दिया है। तो अगर घर गृहस्थ में भी रहना है तो छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है। तो क्या करना है? चौथी चीज क्या है? छोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है। तो चौथा क्या है? चौथा है निभाना है, निभाना है। पर कैसे निभाना है? उसी देही अभिमानी स्थिति में निभाना है, और उसी से ही ये हिसाब किताब कर्म बंधन सारे जो विघ्न समस्याएं ये सब खत्म होगी, और वही हमारे लिए सुरक्षा का कवच बन जाएगा। हमारी प्यूरिटी, हमारी आंतरिक शक्ति ये रक्षा करेगी आत्मा की। और अंत में जो बाबा कहते हैं मक्खन से बाल, आत्मा सहज देह से निकल जाएगी। ये शरीर तो पंच तत्वों को वापस करना है, ये खाद बन जाएगा नई सत्यु की दुनिया के लिए। तो सब तैयार हो उस अंतिम दृश्य के लिए? हाँ, सभी तैयार हो कि डर जाएंगे उस समय? हाँ, जो समझ से थोड़ा थोड़ा डर लगेगा वो हाथ उठाए। ऊपर करके नीचे कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए वृत्ति द्वारा सेवा करो सबकी। वाणी भी अभी कम चाहिए, आवाज से भी परे जाना है, शांति की शक्ति का इस्तेमाल करना है, और उसके आधार से सब बंधन भी समाप्त होंगे और आत्मा संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बन के वापस उड़ेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।